ओम शांति। 15वीं शताब्दी एक बहुत महान भक्त कवि हुए थे हरिदास ठाकुर, जिनके जीवन का वर्णन बंगाली में लिखी गई जो किताब है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर लिखी गई सबसे बड़ी किताब, उसमें मिलता है। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बताया गया है, परंतु वो चैतन्य महाप्रभु से लगभग 35 साल बड़े थे और उन्हीं के ही आह्वान से ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म या कहो अवतरण भारत में होता है। हरिदास ठाकुर एक ऐसा भक्त है कि जिसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, इस्लाम में, और फिर धीरे धीरे वो कृष्ण भक्त बना। और वो कृष्ण भक्त भी ऐसा था कि दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का जाप उसका नियम था, एक दिन में 3 लाख बार इस मंत्र का जाप करना। और सहज ही था कि क्योंकि उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, उसके विरोधी बहुत ज्यादा थे। मायापुर जो बंगाल के पास है, उसने उसका प्रचार करना चालू किया। वो एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने नाम पर इतना ज्यादा फोकस किया, ध्यान दिया, प्रचार किया, प्रसार किया। इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु ने बाद में नाम दिया नाम आचार्य, क्योंकि उनका कहना था कि इस कलयुग में बाकी कुछ भी हो नहीं सकता, केवल हरि का नाम लिया जा सकता है, हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ऐसे हरिदास ठाकुर के जीवन में 2 घटनाएं हैं। पहली घटना, वहां के जो नवाब होते हैं, क्योंकि उस समय मुस्लिम इंडिया है, भारत पर मुसलमानों का शासन चल रहा है, और वहां के जो नवाब थे उनको खुशी होती है ये सुनकर कि ऐसा कोई नेक और सच्चा फकीर है जो खुदा की इबादत करता है, उसे किसी और नाम से पुकारता है परंतु नेक है और सच्चा है, और जो कहता है कि तुम्हें धर्म बदलने की जरूरत नहीं, किसी भी नाम से पुकारो वो एक है। पर उसके जो वजीर होते हैं उसके कान भरते और कहते हैं ये कुफ्र कर रहा है, ये काफिर है, धीरे धीरे अवाम इसकी तरफ हो जाएगी, रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और रियाए उसकी तरफ जा रही है। तब कहीं जाकर वो जो नवाब होता है वो कहता है पकड़ के लेके आओ हरिदास को। हरिदास को पकड़ के लेके आते हैं और उसको कहते हैं कलमा पढ़ो, क्योंकि तुम मुस्लिम घर से हो, मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, मूर्ति पूजा यहां पर नॉट अलाउड इस राज्य में, नाम स्मरण करना इस तरह से अलाउड नहीं है, परंतु वो नहीं मानता तो उसको सजा दी जाती है। और सजा भी ऐसी होती है कि 22 बाजार में कोड़ों से उसको मारा जाएगा, और तब तक मारा जाएगा जब तक वो हरिनाम का संकीर्तन करना बंद नहीं कर देता है। तो उसको मारा जाता है, कई लोग विरोध करते हैं कि ये निर्दोष है, यहां तक कि मुसलमान लोग भी उसका समर्थन करते हैं कि इसको छोड़ दो, ये निर्दोष है, और वो अपना हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते जाता है, और वो 2 जल्लाद उसको मारते जाते तब तक कि जब तक वो मर ना जाए या फिर हरिनाम बंद ना कर दे। पर वो बंद नहीं करता है, वो संकीर्तन करते ही रहता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो नवाब कहता है उन जल्लादों को कह दो अगर वो न मरे तो जल्लादों को मार दिया जाएगा उनके परिवार सहित। तो वो जल्लाद उस हरिदास को कहते कुछ करो हमारा, नहीं तो हम मरेंगे। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए स्वयं ही प्राण त्याग देता हूं, और वो लेट जाता है, हरे कृष्ण कहता है और शरीर छूट जाता है। फिर वो सब आते हैं, देखा मर गया ना, सारे लोगों को बताते हैं यही हाल होगा, उसको पानी से फेंक देते हैं एक खाई में, नीचे झील होती है, पर थोड़े देर के बाद वो उड़ जाता है, और जिंदा हो जाता है, मरता नहीं है, और फिर आता है और फिर सब जगह फैलता है, वो तो जिंदा है। फिर वो नवाब तक खबर पहुंचती है, नवाब फिर खुदा से माफी मांगता है, ये मैंने क्या कर दिया, वो तो नेक फकीर था, वो तो तेरा ही पैरोकार था, मैंने ये क्या कर दिया, और उसे पश्चाताप होता है। ये पहली घटना है कि जिस पर इतना अत्याचार उसके साथ होता है, इतना अत्याचार होता है, बीच बाजार में 22 बाजार, ऐसा है कहावत है, 22 बाजार 22 मार्केट्स के थ्रू उसको फ्लॉक किया जाएगा, मारा जाएगा, विप किया जाएगा। पहले तो असर होता है पर बाद में असर होना बंद हो जाता है। ये एक घटना है। और दूसरी घटना जिसका संबंध मुरली से है, वो दूसरी जगह पहुंचता है, वहां पर एक रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति होता है, वो भी सोचता है कि ये क्या कर रहा है, ये कुफ्र है, काफिर है ये, पर वो अपनी टेक्निक चेंज करता है। उस गांव में एक वेश्या होती है जिसका नाम होता है हीरा, वो उसके पास जाता है और कहता है एक विश्वामित्र एक मेनका की आवश्यकता है, एक हरिदास है उसको हीरा दास बनाना है, ये काम तुम करो। वो कहती है मेरे चुटकी का काम है ये, तो मैं अभी उसको मोहित करके आती हूं। तो वो बैठा हुआ होता है और उसने व्रत लिया होता है कि अगले 3 दिन 3 लाख बार महामंत्र का जाप करूंगा। तो वो आके बैठती है, वो नाच गाना वो सब करती है, यूजुअल जो करते हैं ऋषि मुनियों के सामने, अप्सराए ओल्ड टेक्निक्स तो वो उठता ही नहीं है। तो वो फिर आंख खोलता है तो वो कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। वो कहता है रुकना पड़ेगा क्योंकि मैंने व्रत लिया है 3 लाख बार करने का, जब मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। तो वो कहता है बैठे वेट। तो वो अपना चालू रहता है, तो वो बैठे बैठे बोर होने लगती है पहला दिन। फिर वो रामचंद्र आके पूछता है खान क्या हुआ, वो कहता है अभी 2 दिन बाकी है, मैं 3 दिन में काम पूरा करूंगी। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह आके बैठती है, शाम तक, दोपहर तक, देर रात तक। फिर उसको समझता है वो अपना चालू है उसका, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो कहता है ये क्या कर रहा है, हरे कृष्ण करते रहता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो भी थोड़ा बोलने लगती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर तीसरा दिन होता है, फिर तीसरा दिन वो आके वहां बैठी हुई होती है, वो कहती है आज तो मुझे अपना काम पूरा करना है। तो वो फिर बैठे बैठे करेगी क्या, हरे कृष्ण। वो देखती है आसपास वातावरण शांत हो रहा है, वो योगी है, वो तपस्वी है, वो ब्रह्मचारी है, उसका अपना प्रकाश है। और वो जब करते 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 वो जो वेश्या होती है हीरा बाई, वो भी धीरे धीरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करने लगती है, और उसके मन में पहली बार परम शांति का उसको अनुभव होता है। फिर वो उसको वो आंख खोलता है, वो कहती है कि मैंने अपना जीवन पाप में गुजारा है, मैं तुम्हारे जैसा नापाक जीवन बिताना चाहती हूँ। वो कहता है कि जाओ जो कुछ तुमने कमाया है, क्योंकि बहुत अमीर होती है वो, तो जो कुछ कमाए सब गरीबों में बांट दो और आ जाओ। और तब तक वो रामचंद्र जो खान जो होता है वो शाम को कहता है सब लोग शाम को तुम आ जाना, ये जो हरिदास है ना इसकी सच्चाई, क्योंकि उसके जो बिलीवर्स होते हैं हरिदास को मानने वाले बहुत लोग होते हैं, तो विधि ये होती है कि उसके जो मानने वाले हैं इसकी सच्चाई देख ले, उसके बाद ही ये वो उससे मुक्ति होगी, नहीं तो इसको ऐसा निकाल देंगे तो ये तो बड़ा संत बन जाएगा, सूली पे चढ़ा दो तो जीसस क्राइस्ट जैसा महान आत्मा बन जाएगी। इसके लिए विधि उसने अलग अपनाई थी कि लोग देखे, जो उसको सुनने वाले हैं उनके मन में इसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, ये विधि होती है। तो वो कहता है शाम तक सब पहुंच जाना। तो शाम तक वो जो हीरा बाई होती है वो फिर भगवे वस्त्र धारण करके आ जाती है, और वो भी वहां बैठकर हरिनाम हरिनाम हरे कृष्ण चालू होता है। तो वो सारे गांव वाले आकर देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है ये कैसे परिणाम हो गया। फिर वो उसको कहता है तुमको किस लिए भेजा था, तुम क्या कर रही हो। वो कहती है वो सारा मेरा विलीन हो गया महाज्योति में, संडे की मुरली में, मधुबन निवासियों की मुलाकात में। माया कितना भी कोशिश करे, जो बाप की कशिश में रहते हैं वो माया जीत है। हर प्रयत्न किया गया इस कहानी में हरिदास को हरिनाम बंद करने के लिए, भक्ति से अलग करने के लिए, और ये तो दो ही उदाहरण बताए हैं, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। एक हरिदास ठाकुर के, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनकी बहुत महिमा की है। वो जो जगई और मदई है, उनका जो कन्वर्शन हुआ था बंगाल में, वो इनके द्वारा और जीव गोस्वामी के द्वारा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य। तो ये ऐसी आत्माएं हुई है द्वापर युग से अब तक इतिहास में, चाहे उन्होंने भगवान को जाना या न जाना, क्योंकि भगवान तो बहुत बाद में आए, कलयुग के अंत में, ये द्वापर युग की बातें हैं या कलयुग के बीच की बातें हैं। इस पीरियड में भी, इस विकारी वातावरण में रहते हुए भी, इनका सारा ध्यान उस निराकार की ओर था, या संसार से परे जो परम शक्ति थी उसकी ओर था। चाहे उन्होंने कृष्ण की उपासना की, क्राइस्ट की उपासना की, गुरु नानक की उपासना की, या किसी की भी उपासना की, जिनको इन्होंने भगवान समझा, पर ये संसार से ऊपर थे, देहभान से ऊपर थे, और मनुष्यों के प्रेम से ऊपर थे, और भगवत प्रेम को सर्वस्व समझा था। ऐसे प्रभु को मानने वाले ये जो अनन्य भक्त थे संसार में, ये सभी मायाजीत थे। तो बाबा ने कहा है, जो बाप की कशिश में रहते हैं, वो क्या होता है, माया कितनी भी कोशिश करे, उन पर कोई असर नहीं। ऐसे अनन्य भक्त इस संसार में हुए हैं, और ऐसे जो भक्त होंगे वो इस समय कहां होंगे, यहीं पर होंगे कहीं ना कहीं, इसी ब्राह्मण परिवार में। क्योंकि द्वापर में और कलयुग अंत में जिन्होंने भगवान से इतना प्यार किया, क्या वो विकारी हो सकते हैं इस समय? वो सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं, जो भी हिंदू धर्म में महान संत हुए हैं, मीरा से चैतन्य से लेके तुकाराम, एकनाथ, तुलसीदास, सूरदास, वो सब कहां है इस समय? यहां पर। ये सब यहीं पर है, क्योंकि यहां उन्होंने भगवान से इतना प्यार किया, तब कहीं जाकर वो प्यार द्वापर से प्रकट हुआ और वो भगवान से ऐसा ही प्यार करने लगे। तो ये सारा वर्णन चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। तो मधुबन निवासियों से मुलाकात, सात बातें बताई है बाबा ने मधुबन निवासियों को। सबसे पहली, जो मधुबन की महिमा, वो मधुबन निवासियों की महिमा। पहला, पहला जो मधुबन की स्तुति, मधुबन का गायन, मधुबन की महिमा, मधुबन का स्तवन, वो मधुबन निवासियों का स्तवन, जो प्रेज, जो ग्लोरी, जो एप्रिसिएशन मधुबन का है, जो रिकॉग्निशन मधुबन का है, वही स्तवन, वही ग्लोरी, वही महिमा, वही गरिमा मधुबन निवासियों की है। कितना बड़ा सम्मान है, पहला ही सम्मान कितना ऊंचा है। सभी तीर्थ यहां पर आकर मिल रहे हैं, सभी तीर्थों से बड़ा महातीर्थ मधुबन है। जो छोटे छोटे जगह है संसार में, जहां पर अवतार आए, पैगंबर आए, पयंबर आए, ईश्वर पुत्र आए, बिगॉटन सन आए, शंकराचार्य आए, इमाम आए, फकीर आए, सन्यासी आए, उदासी आए, तपस्वी आए, योगी आए, महात्मा आए, धर्म स्थापक आए, धर्म गुरु आए, धर्म उपदेशक आए, ऐसे जो भी जहां जहां स्थानों पर गए हैं, उन्होंने जो जो किया वो सांस तीर्थ बने। जहां जहां उन्होंने जन्म लिया, बुद्ध ने जहां जन्म लिया लुम्बिनी तीर्थ क्षेत्र बन गया, जहां सबसे जहां तपस्या की गया वो तीर्थ बन गया, जहां पर सबसे पहला प्रवचन दिया सारनाथ वो तीर्थ बन गया, और जहां शरीर छोड़ा वो कौन सा, खुशीनगर, वो भी तीर्थ बन गया। देखो, जन्म जहां लिया वो तीर्थ, प्रवचन दिया जहां दिया वो तीर्थ, तपस्या जहां की वो तीर्थ, जहां शरीर छोड़ा वो तीर्थ, यहां पर भगवान ने जन्म लिया, यहां भगवान ने अवतरण किया, यहां भगवान ने कर्म किए, यहां भगवान के भूमि, इस भूमि पर परमात्मा कण, परमात्मा के पग से उड़ी हुई धूल है। इस भूमि को परमात्मा के चरणों ने पुनीत किया है। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। अयोध्या के लिए तुलसीदास ने कहा है कि हे भूमि धन्य है, जहां पर तेरे पग पड़े हैं। मथुरा की भूमि, वृंदावन की भूमि, काशी की भूमि, सप्तनगरिया है, द्वारका की भूमि जहां पर राज्य किया, तो ये सारी भूमियों को तीर्थ कहा गया है। और सबसे बड़ा इन सब में तीर्थ कौन सा है? मधुबन महातीर्थ, जहां भगवान का अवतरण हुआ, भगवान ने गीता सुनाई, भगवान ने भागवत किया, रास रचाई, श्रेष्ठ कर्म किए, सभी दादियों के, ब्रह्मा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, जगत माता और जगत पिता ने तपस्या की, सभी दादियों ने तपस्या की, सभी महान आत्माओं के, ब्राह्मणों के पग यहां पर पड़े, और निरंतर जहां अनवरत तपस्या चल रही है। ऐसा कौन सा समय है जिस समय मधुबन में तपस्या नहीं चल रही है? रात को 2 बजे सिक्योरिटी वाले, दिन में पार्टी आ रही है, अमृत वेला बाबा के कमरे में कोई है ही, शाम को कोई है ही। ऐसा कौन सा समय है जो चारों धाम में कोई ना कोई नहीं है? तपस्या की ज्योत अविरल धारा बह रही है। तो मधुबन की महिमा अगाध है, अपरंपार है। तो वहां जो रहते उनकी महिमा भी वैसी ही है। यह सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, समीप साकार की पालना, समीप साकार में रहना। मधुबन में आना अर्थात ये क्या है? घर है, दर है और दिल। घर पे रहना, दर पर रहना, दिल पर रहना, तीनों के समीप रहना अर्थात मधुबन निवासी। घर में रह रहे हो, दर पर रह रहे हो और दिल पर रह रहे हो, चुल पर रह रहे हो। जो चुल पर वो दिल पर। तो समीप रहना, इस स्थान पर रहना अर्थात इन सभी चीजों के समीप रहना, ये दूसरा। तीसरा, मधुबन निवासी अर्थात, तीसरा क्या बताया? मधुबन निवासी अर्थात स्वतः योगी, सहज योगी, निरंतर योगी। एक उदाहरण दिया है यहां पर, कौन सा उदाहरण? रेल का। मधुबन पट्टा है, इंजन क्या है वो बताया नहीं, पर क्या हो सकता है? शिव बाबा इंजन है, ब्रह्मा बाबा इंजन है, डबल इंजन तुमको मिली हुई है, ये एक हो सकता है या फिर श्रीमत। तो इस पट्टे पर स्वतः ही चलते रहते हो, तो मधुबन वो पट्टा है, मधुबन वो रेल ट्रैक है, जहां पे आना अर्थात स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्वतः सहज योगी। आज के वरदान में भी कहा है, योग लगाने वाले योगी नहीं, एक दो घंटे वाले योगी नहीं, स्वतः योगी, सहज योगी, जिनका योग लगा ही हुआ है, योगी जीवन वाले योगी, जिनका जीवन और जहां योग है, योग में कर रहकर जो भी कार्य करोगे असफल होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, सफल ही होगा, योग में हर कार्य जो किया जाएगा। तो मधुबन निवासी अर्थात स्वतः योगी। वास्तविक योग कब चालू होता है? जब बाबा के कमरे से बाहर आते हो। वास्तविक योग करने का टाइम है 9 से 5, ड्यूटी आवर्स। वो जो अमृत वेला है और वो जो मुरली है, तब तो चलो कुछ नहीं, पर स्वतः योग अर्थात तब कहा जाएगा जब हम चलते फिरते घूमते फिरते कर्म योगी है, योग लगा ही हुआ है, जैसे ये अनुभव हो रहा है कि ऊपर से किरणें आ रही है, सहज योगी, अभी भी योगी। जब क्लास करा रहे तब योगी, जब क्लास सुन रहे तब भी योगी, जब क्लास नहीं सुन रहे तब भी योगी, चाहे चल रहे घूम रहे फिर रहे हैं। वो क्या है, कबीर ने जो कहा है, खाऊं पीऊं सो पूजा, घूमूं फिरूं सो परिक्रमा। खाऊं पीऊं सो पूजा, घूमूं फिरूं सो परिक्रमा। ऐसी अवस्था कि चलते फिरते उठते बैठते गाते खाते सब करते, परंतु दिल की तार जुड़ी हुई है, दिल यार्डे हथकारडे, ये अवस्था योगी की अवस्था है। तो मधुबन निवासी अर्थात लगाने वाले नहीं, मेहनत करने वाले नहीं, कैसे लगाओ ये कहने वाले नहीं, स्वतः स्वतः निरंतर, ये तीसरा। चौथा, मधुबन निवासी अर्थात माया जीत, माया कशिश, बाप की कशिश में जो रहते माया कितनी भी कोशिश करे आकर्षित नहीं होते। उदाहरण में बताया, हरिदास ठाकुर 3 दिन तक ध्यान मग्न और वो हीरा भाई बाद में क्या बन गई हीरा बन गई, हीरा दास बनाने आई थी उसको हरिदास को पर वही परिवर्तित हो गई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है योगी की कि सामने वाला परिवर्तन हो जाए, विरोध करने वाला झुक जाए। वो नवाब आत्मग्लानी से पीड़ित हो गया, मैं अल्लाह के दरबार में अब किस मुंह से जाऊं, वो मुझे कहेगा। वो वहां छोटे छोटे बच्चे होते और जो जल्लाद उनको मार रहे होते और उनको पूछते हैं उनके बच्चे कि पिताजी आप उनको क्यों मार रहे हो, वो कहता है वो कुफ्र है, वो काफिर है, वो कलमा नहीं पढ़ता, वो इबादत नहीं करता खुदा की, इसलिए। तो वो छोटे बच्चे कहते हैं उसको, फिर उसकी हिफाजत कौन कर रहा है अगर वो खुदा को नहीं मानता तो उसकी हिफाजत कैसे हो रही है, तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि जरूर हिफाजत करने वाला तो एक ही खुदा है और वो भी सच्चा फकीर है। और खुदा ने तो कहा है मेरे जो भी पैगंबर पैगंबर होंगे ऐसे सच्चे फकीर उनका सम्मान करो। ये मैंने क्या कर दिया, आत्मग्लानी इस गिल्ट फीलिंग से सफर करते हैं सब, बाद में पश्चाताप होता है सबको। तो माया, बाप की कशिश में रहना, कशिश अर्थात आकर्षण, छोटा है बहुत बड़ा कशिश क्या होती है, कशिश अट्रैक्शन से भी थोड़ा ज्यादा, अट्रैक्शन से भी थोड़ा ऊपर, दीवाना। हमने वो प्रेम की 7 अवस्थाएं है ना, वो अरेबिक में ना, एक है आकर्षण, फिर थोड़ा सा और होता है इन्फैचुएशन, उससे भी थोड़ा और ऊपर होता है कुछ और, जुनून, ऑब्सेशन, दीवानगी, पागलपन, आशिकी, वो होता है ऐसी दीवानगी, छोटा मोटा नहीं, दीवानगी। वो हरिदास को कहते हैं तुम मान लो ना तुम्हारा जीवन बच जाएगा। एक बुढ़िया आती है उसको कहती है अरे तुमको कृष्ण भक्ति करनी है ना, बाद में करना, अभी बोल दो हाँ, क्योंकि जान है तो जहान है, बाद में करते बैठना तुम, इनके सामने ढोंग करो। वो कहता है कृष्ण प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है, परमात्मा प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है, मैं कैसे झूठ बोलूं, जीवन चला जाए तो चले जाने दो, मेरे ही जन्म के पाप जो है ना वो अभी चुकते हो रहे हैं, ऐसे कहता है वो। ये जो मुझे मार रहे हैं अच्छा है ना, मेरे पाप चुकते हो रहे हैं, नहीं तो पाप चुकते कैसे होंगे, कृष्ण धाम में मैं कैसे जाऊंगा, जन्म के पाप चुकते हो रहे अच्छा ही है। एक मराठी में महार छोटी जाति का एक संत है, उसने लिखा है कृष्ण निंदा घड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति, मुझे यह छोटी जाति में जन्म क्यों हुआ मेरा, क्योंकि किसी जन्म में मेरा कृष्ण निंदा हुई थी, मैंने भगवान की जिसको कृष्ण कह रहे उसकी निंदा की थी, इसलिए छोटी जाति में जन्म हुआ, इसलिए अभी ये लोग पंडित लोग मुझे मंदिर में आने नहीं देते। उम्बरठासी कैसे शिव आमी जाति हीन, रूप तुझे कैसे पाऊ त्यात आमी दीन, हम इतने दीन है हे प्रभु मैं तुझे तेरे दर्शन कैसे करूं, पायरीशी हो दंग गाऊनी अभंग, परंतु ये जो सीढ़िया है बस वहीं पर बैठकर मैं तेरे गुणगान गाऊंगा और मगन होऊंगा, क्योंकि ये मंदिर के पुजारी आने नहीं देते शूद्रों को, छोटी जाति के लोगों को। तो माया जीत, बाप की कशिश, तो कशिश अर्थात केवल आकर्षण नहीं, केवल अट्रैक्शन नहीं, पागलपन, दीवानगी, आशिकी, स्पिरिचुअल आशिकी, रूहानी आशिकी, उसे कहा जाता है कशिश, जिसके बिना रह ही नहीं सकते, जिसके बिना तड़पती है, बिछो होता है, वो होती है दीवानगी। कितना? चौथा। पांचवा, सेवा। दूसरे लोगों को उदाहरण दिया जाता है सेवा में, ऊपर नीचे होता है, तो किसका उदाहरण दिया जाता है? आशीष भाई, मधुबन का दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत क्या होता है और उदाहरण क्या होता है? एक है एग्जाम्पल, एक है उदाहरण, उदाहरण एक है दृष्टांत। दृष्टांत दिया जाता है, एक दृष्टांत दो अलग है। दृष्टांत, इसका दृष्टांत सुनाओ, नरेशन, वो अलग, आंखों देखा वो दृष्टांत अलग, यहां दृष्टांत दिया जाता है अर्थात उदाहरण दिया जाता है। दृष्टांत अर्थात लिविंग एग्जाम्पल, ये दृष्टांत है। मधुबन निवासियों का दृष्टांत सेवा में नीचे ऊपर होता है, तो मधुबन निवासियों का दृष्टांत दिया जाता है। यहां पर देखो कैसे प्यार से सेवा की जाती है, हर चीज में कैसे प्यार से सेवा की जाती है, तो ऐसा उदाहरण संसार की आत्माओं को दिया जाता है। इसलिए बाबा ने कहा जैसे सेवा में फुल मार्क्स है, वैसे बाकी चार सब्जेक्ट है उसमें फुल मार्क्स होने चाहिए। खाली सेवा में फुल मार्क्स नहीं, मधुबन निवासी अर्थात फोर सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स, योग भी पावरफुल, ज्ञान भी पावरफुल, धारणाएं भी संपूर्ण, तब कहेंगे मधुबन निवासी। अदरवाइज सब मधुबन निवासी, थोड़े से कम मुझसे नीचे। थोड़ा लोअर मधुबन निवासी, फुल मधुबन निवासी नहीं, हाफ कास्ट मधुबन निवासी। जैसे तुम कहते हो सुख शांति चाहिए तो यहां आओ, हैप्पीनेस पीस प्रॉस्पेरिटी, वैसे भी ये भी। तो ये था पांचवा। फिर है छठवा। छठवा क्या है? छठवा ब्रह्मा भोजन सुनना। छठवा क्या बताया? ब्रह्मा भोजन सुनना, सुनना और खाना, ये दोनों को कंबाइन कर दिया बाबा ने। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही भोजन तुमको कैसे मिलते हैं? दो शब्दों का प्रयोग है, ताजा और गरम। ताजा और गरम कौन सा भोजन? स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म भोजन ताजा और गरम अर्थात, सूक्ष्म भोजन कौन सा है मधुबन का? कन्हैया भाई इस पर आज थोड़ा लिखना होमवर्क, मधुबन का सूक्ष्म भोजन क्या क्या है? मधुबन के सूक्ष्म का सूक्ष्म भोजन, सटल डाइट ऑफ मधुबन, ज्ञान और सूक्ष्म भोजन क्या है? ज्ञान, चिंतन, योग, पालना, पवित्र पालना और वाइब्रेशंस, संग, ज्ञान चर्चा और वायुमंडल वाइब्रेशंस, वो हो गया सूक्ष्म भोजन। क्या मिल रहा है आत्मा को यहां पर? संकल्प, वाइब्रेशंस, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टि, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। और मधुबन में कौन सा सूक्ष्म भोजन मिलता है आत्मा को? अशरीरीपन का भोजन मिलता है उसको, अनुभवों का भोजन मिलता है और प्राप्तियों का भोजन, भाग्य का भोजन, सहयोग का भोजन, स्नेह का भोजन, अपनेपन का भोजन, बाप से समीपता का भोजन, यहां ज्यादा अनुभव होता है। और तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही भोजन, वो भी कैसे मिलते हैं? गरम और ताजा, तवा टू माउथ डायरेक्ट। एक बार विदेशियों को बाबा ने कहा है, जो मुरली ट्रांसलेट करके सुनते हैं उनको सूखी रोटी चपाती, मधुबन को ताजा ताजा, वो लोग सूखी हुई चपाती खाते हैं। बाद में ट्रांसलेट करो हिंदी की मुरली इंग्लिश में या दूसरी भाषाओं में, उसमें वो जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, जो रिलिश होता है, वो जो स्वाद, वो उड़ जाता है। ट्रांसलेट करते ही भाषा, हिंदी भाषा को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करो, अनुवादित करो, उसमें जो फ्लेवर है, उसमें जो एक संगीत है, जो म्यूजिक है, कशिश है, उसमें जो एक माधुर्य है, मधुरिमा है, उसमें जो ब्यूटी है, सौंदर्य है, वो खो जाते हैं, रसना उसकी विलीन हो जाती है जैसे ही भाषा में। इसलिए हिंदी में ही सुनना है, हिंदी में ही उसको समझना है, जिस भाषा में उसने बोला है, ठीक है, उसी भाषा में उसको समझना है। दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके हम देखते हैं इधर हिस्ट्री में, मेडिटेशन हॉल में कई लोग वो दूसरी भाषा की मुरली लेके बैठते हैं, वो रस नहीं आएगा। उसने जिस भाषा में बोला है उसी भाषा में सुनना है, उसको समझना है। सीखो, विदेशी कितना सीख गए, सीख गए ना, परमात्मा प्रेम सब कुछ करा देगा, आसान है। और लास्ट पॉइंट ये था सिक्स्थ, लास्ट पॉइंट है नवी, नई तैयारियां, न्यू प्रिपरेशंस। उसमें 7-8 उदाहरण दिए, लगभग 7-8 नहीं, कम, 5-6। कौन सी? जैसे मधुबन में तुम स्थूल में एडिशन करते हो, हर बार अलग डेकोरेशन होता है, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, कुछ ना कुछ नया होता है। वैसे ही स्थूल में, सूक्ष्म में भी नया कुछ करो। यहां ये पहला उदाहरण, जैसे मधुबन में न्यू एडिशन होता है वैसे सूक्ष्म एडिशन करो। एक दूसरा, जैसे लहर, सागर की लहरें अलग अलग होती है, एक ही लहर नहीं होती है, वैसे यहां पर भी सूक्ष्म लहरें हो, कभी प्रेम की, कभी ज्ञान की, कभी आनंद की, अलग 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 लहरें। सागर में जाना तो लहराना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, दिलवाड़ा, ये चैतन्य दिलवाड़ा है। उस दिलवाड़ा में एक एक जगह अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कारीगरी, एक एक मूर्ति की अलग अलग विशेषता, कारीगरी डिजाइन विशेषता है। वैसे तुम ये जो है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा है, तुम एक एक मूर्ति हो, और तुम्हारा एक एक का जो कमरा है, कमरे के अंदर तुम मूर्ति हो, तो एक एक मूर्ति की अलग अलग कारीगरी डिजाइन और विशेषता होनी चाहिए। इस पर चर्चा करो, यह सहज होगा, असंभव नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन करना है, किसमें करेंगे? अलग अलग जगह पर स्पेशलाइजेशन करो, वैराग में स्पेशलाइजेशन, तपस्या में स्पेशलाइजेशन, त्याग में स्पेशलाइजेशन, डिटैचमेंट में स्पेशलाइजेशन, साक्षी भाव में स्पेशलाइजेशन, योग में स्पेशलाइजेशन, ज्ञान में स्पेशलाइजेशन, चिंतन में स्पेशलाइजेशन। ऑप्शंस अवेलेबल, वो उधर रहते हैं ना, चुनना पड़ता है क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, सर्जरी चाहिए, ऑर्थो चाहिए, डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, क्या करना है। और किसी किसी को कम मार्क्स होते तो डिग्री नहीं, डिप्लोमा मिलता है, किसी को डिप्लोमा भी नहीं, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ऐसे सब होता है उधर, बड़े जबरदस्त कंपटीशन होती है, गला घोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, गला घोट प्रतियोगिता। तो वैसे यहां पे कोई प्रतियोगिता नहीं है, सारे ऑप्शंस खुले हैं, जिसको जो चाहिए वो स्पेशलिटी में एमडी, पीएचडी किसमें करनी है, कमलेश भाई किसमें पीएचडी करेंगे, सभी में एक बताओ पहले, वैराग में, वैराग में पीएचडी। तो एक टॉपिक चुनना है, उसमें स्पेशलाइजेशन करना है। तीसरा उदाहरण, तुम्हारे लिए बहुत सहज है बाबा ने कहा, जैसे देवताओं की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, देवताओं की मेमोरी पावर के बारे में बाबा ने चर्चा की है, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, फटाफट याद रखते हैं। वो जो टीचर जो उनको पढ़ाते हैं, निमित्त मात्र पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं वहां पे, सतयुग में पढ़ाई कौन सी होगी विट्ठल भाई, क्या पढ़ाएंगे सतयुग में, स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री तो चालू हुई नहीं अभी, हिस्ट्री तो उधर द्वापर से मारकाट चालू होगी, वो तो हुआ ही नहीं, ड्रॉइंग सिखाएंगे, भाषा, संगीत, नृत्य, ललित कला, और क्या सिखाएंगे श्याम भाई, इकोनॉमिक्स, बार्टर एक्सचेंज, अच्छा उसका भी सिखाना क्या है, लो और दो, लेन देन, राजविद्या, राजगुहम, कौन सी वाली राजविद्या, अच्छा राज करें, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस तो होगा, पॉलिटिक्स तो वहीं से चालू हो गया, पॉलिटिक्स का अच्छा अर्थ है, उसको वैसा अर्थ नहीं है जैसे अब समझा जाता है, पॉलिटिक्स बड़ा ही शाही शब्द है, राजनीति का कोई शिक्षक होता था बड़ा मान होता था, चाणक्य का कितना मान था क्योंकि राजनीति का शिक्षक था, पर वो कूटनीति बनी पड़ी बाद में, बाद में वो क्या कहते हैं उसको, डिप्लोमेसी बन गई, डिप्लोमेटिक बन गई, वो अलग। तो जैसे देवताओं के लिए सहज है वैसे तुम्हारे लिए भी सहज है। और एक उदाहरण चौथा, जैसे उस देलवाड़ा मंदिर में जाके कहते कमाल है उनकी जिन्होंने बनाया, वैसे तुम्हें आके कहे कि कमाल है किसने बनाया। हाँ, एक दो की विशेषता की कमाल, ये भी एक उदाहरण, एक ही छोटा सा पैराग्राफ है वो, इसमें कितने उदाहरण दिए पापा ने। बोलते समय अगर हम डायरेक्ट ये मुरली सुन रहे होते ना तो लगेगा पता नहीं एक ही चल रहा है पूरा, मधुबन निवासी बैठे बाबा मुरली सुन रहे, सुनने के बाद ऐसा लगता है अच्छा था, पर उसमें इतनी गहराई थी और स्पीकर इतनी ऊंचाई से बोल रहा था ये पता ही नहीं चलता है। ये पता तब चलता है हर बार, मतलब हमें तो ऐसा ही होता है कि जब मुरली पढ़ते हैं तब पता चलता है बहुत सारी चीजें, खाली सुनने से इतनी गहराई पता नहीं चलती है। इतनी सारी बातें, इतने चार पांच उदाहरण दे दिए, जैसे देवताओं की मेमोरी तेज होती है, जैसे वो देलवाड़ा की तारीफ कर रहे, जैसे लहरें, जैसे यहां पर न्यू एडिशन होती है वैसे सूक्ष्म में एडिशन करो, कितने उदाहरण दिए। और फिर लास्ट में कहा ये सब करने के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता। संकल्प तो बहुत अच्छे करते हो, दृढ़ता को अंडरलाइन करो। कुछ कुछ शब्द बाबा ने इंग्लिश भाषा से लिए हैं और उनका कभी भी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, कभी भी नहीं किया, क्योंकि वो इंग्लिश के शब्द ही इतने पावरफुल है। फॉलो फादर के लिए कभी ऐसा नहीं कहा बाप का अनुसरण करो, अनुकरण करो, अनुगमन करो, कभी नहीं कहा तुम बाप, तुम फॉलोअर्स हो, सदगुरु के फॉलोअर्स, ऐसे नहीं कहा तुम चेले हो, शिष्य हो। आज बाप दादा अपने शिष्यों से मिलने आए हैं, कभी सुना मुरली में आज सदगुरु अपने शिष्यों से, शिष्य शब्द कभी प्रयोग नहीं किया, फॉलोअर्स फॉलोअर्स ही। सुशील भाई आपके लिए काम है, कौन से ऐसे बाबा ने शब्द रखे हैं इंग्लिश वाले जो इंग्लिश ही रखे हैं, हिंदी में उसको आज तक कभी ट्रांसलेट नहीं किया। एक तो बताया फॉलो फादर, एक तो बताया फॉलोअर, फिर बताया ये अंडरलाइन, हमेशा अंडरलाइन ही कहा है, संशोस फादर, वो तो कहावत जैसा हो गया, वो नहीं, एक एक शब्द जिनका आज तक कोई, और वो ट्रांसलेट करते तो एकदम ब्राह्मणों को भी समझ में नहीं आएगा। जैसे बाबा अगर कहे कि ये जो ड्रामा है ये बहुत ही किंग कर्तव्य विमूढ़ करने वाला है ये ड्रामा वंडरफुल है ये ड्रामा, इस तरह के शब्द प्रयोग किए, आश्चर्यकारक, आश्चर्यजनक, ये शब्द भी प्रयोग नहीं किए। ड्रामा कैसा है, वंडरफुल, इस ड्रामा की पुनरुक्ति होती है, कभी कहा है हूबहू, कहा है पुनरुक्ति नहीं कहा, हूबहू उधर वाला आ गया, उर्दू आ गया, पर पुनरुक्ति होती है ऐसा कभी नहीं कहा, रिपीटेशन। तो ऐसे कौन से इंग्लिश शब्द है जो इंग्लिश ही रखे गए हैं, बाबा ने खुद इंग्लिश ही रखे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन अब तक किया नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो लास्ट में कहा दृढ़ता को अंडरलाइन करो। तो सात बातें हैं, सबसे पहली बात महिमा, जो मधुबन की महिमा है, जब भी मधुबन की महिमा सुनो, सुनो कि सोचो कि मेरी महिमा हो रही है। दूसरा दर दिल और घर, घर दर दिल के समीप। तीसरा स्वतः योगी और निरंतर, स्वतः योगी और सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः और सहज। चौथा माया जीत, कितना भी माया कोशिश करे कशिश बाप से हो। पांचवा सेवा, सेवा में 100% जैसे सेवा में मार्क्स है वैसे सब सब्जेक्ट्स में। अगला सुनना और खाना, तो खाना कैसा है, सुनना गरम और ताजा। और लास्ट है नई तैयारी, तो ये सारी नई तैयारी, नई विधियां, न्यू प्रिपरेशंस, न्यूनेस हर चीज में लानी है। ओम शांति।